भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका योग रहस्य के इस शुभ और कल्याणकारी जगत में। दोस्तों, योग योग सब कहे, लेकिन जो योगी हो जाए, जीवन उसका स्वस्थ हो, तन मन निरोगी हो जाए। जो व्यक्ति योग को अपने जीवन की यात्रा के साथ जोड़ देता है, तो दोस्तों जीवन की यात्रा बहुत ऊंची हो जाती है। यकीन जाने, इस पृथ्वी पर उस जैसी कोई यात्रा नहीं है। योगी सच्चे तीरथ की तरह हो जाता है। और आज जो हमारे मेहमान यहां पधारे हैं, वो सब ऐसे ही योगी हैं। वो बड़े ऊंचे उनके अरमान हैं। ऐसे योगी सचमुच सच्चे तीरथ के समान हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने ऐसे प्यारे मेहमानों का, हमारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी का। हमारे बीच डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, आप वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में हैं हमारे बाबूलाल भाई जी, जो कि योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। आइए इनसे मिलते हुए योग की और गहरी जानकारी को, और गहरे खजाने को आज हम अपने में भरते हैं और योग को और बारीकी से जानते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से ये जानना चाहूंगा कि तन और मन को स्वस्थ रखने में योग का क्या योगदान है।
जैसे कि शब्द योग है ना, योग, और योग का एक बहुत ही सुंदर बिंदु है मनमना भव। अपने मन को अगर हम परमात्मा में लगा दें तो यही योग है
जी,
यही मेडिटेशन है। और इसके द्वारा जो आज जिस पे बहुत रिसर्च हुई है कि जो हमारे मन के विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, कैसे वो, इसको हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी, मतलब विचारों का हमारे ब्रेन पर, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है, प्रतिरोधक शक्ति है, उस पर क्या असर पड़ता है। दूसरा, मन विचारों का हमारे ब्रेन के साथ, फिर हमारे हार्मोन्स पे क्या असर पड़ता है।
ओके,
क्योंकि बॉडी को पूरी 80,000 अरब कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं,
तो एक विचार का जो 80,000 अरब कोशिकाएं, सब पे प्रभाव पड़ता है।
सब पे प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है वो कैसे वो हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये देखने में आया कि हमारा जो 4 से 5 ये हार्मोनल सर्ज होता है,
4 से 5 सुबह या शाम,
सुबह सुबह
सुबह का,
इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं। दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है
जी,
और हाइपोथैलेमस में घड़ी भी, जैसे मैं कल हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहते हैं, और उसमें भी एक, उसमें भी इसके अनुसार भी 4 से 5 का समय सबसे उपयुक्त है मेडिटेशन करने के लिए, योग करने के लिए। और अगर उस समय में हम आनंद की स्थिति में चले जाएं 20 मिनट के लिए 4 से 5 के बीच में, तो हमारे लगभग 18 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से 9, पिट्यूटरी से 8, जो पिट्यूटरी यहीं पर है बिल्कुल इसके हाइपोथैलेमस के नीचे है
जी,
और पीनियल ग्लैंड जो इसके पीछे है, तो एक उससे, तो 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल जाएंगे
जी।
और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी शरीर की या मन की कोई भी रोग, मन में डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, फोबिया है, या अंदर से बहुत जल्दी आप सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, बहुत इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, या बॉडी की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, एसिडिटी, एस्थमा, हड्डियों की तकलीफ, जो भी, मतलब कैंसर, वो अगले 24 घंटे में कम हो जाएंगे,
तो उस पे ये प्रभाव डालते हैं अपना।
तो ये 4 चीजें हैं, शांति, प्यार मतलब रूहानी प्यार, अतिंद्रिय सुख और आनंद, ये 4 चीजें ऐसी हैं, वो जो ऑर्केस्ट्रा है एक्चुअली हमारा, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, गले में एनर्जी ग्लैंड है थायराइड
जी,
इसके पीछे पैराथायराइड जो हमारी हड्डियों में कितना कितना कैल्शियम, हड्डियां कितनी स्ट्रांग होंगी डिसाइड करती है, पेनक्रियास, हमारा इंसुलिन निकलता है ताकि बॉडी शुगर को यूज कर सके एनर्जी के लिए
जी,
फिर हमारी एडिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है ग्लैंड, ये चैलेंज को फेस करने के लिए, जो भी हमारी चैलेंजेस हैं लाइफ में उनको फेस करने के लिए, फिर हमारे मेल या फीमेल ग्लैंड्स होती हैं, तो सात ग्लैंड्स हैं, एक तरह का हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। अगर आपके पास ये चीजें हैं, सुबह सुबह अगर आपने 4 से 5 के बीच में 20 मिनट शांति, प्यार, खुशी, आनंद, स्पेशली आनंद, आनंद एक्सट्रीम फेज है, अगर उसका आपने अनुभव कर लिया तो ये पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा हार्मोनाइज हो जाएगा,
सब समन्वय हो जाएगा,
सब समन्वय हो जाएगा और सारा आपकी लाइफ म्यूजिक बन जाएगी, संगीत बन जाएगी, सारे गामा पादा निसा।
क्या बात है,
राइट। अगर आपने उस समय 4 से 5 के बीच में अगर थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी जल्दी, थोड़ी सा गुस्सा, थोड़ा सा उदासी या थोड़ा सा डर, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये बात अपने दर्शकों को, जो 4 से 6 के बीच में जो नींद होती है ना, वो नींद में हमें डरावने सपने आते हैं,
ज्यादातर होता है,
टेरर ड्रीम्स आते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, विकारों के ड्रीम्स आते हैं, इसे 4 से 6 सोना बहुत ही खतरनाक है। और ये चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे उठने के आधा घंटे बाद ऑटोमेटिक हमारे दिमाग से हमारे मन में विचार चलने लगते हैं, आज हमें ये काम करने हैं। और एड्रेनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर, जो चैलेंज को फेस करने वाली ग्लैंड है,
हाँ जी,
उससे कॉर्टिसोल हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है।
ओके,
जो भी आप विचार करेंगे उठने के आधे घंटे बाद, जो भी भावना आपके मन में आएगी वो डिसाइड, 8 बजे उसकी पीक होती है, 8 बजे तक आप कौन सा विचार या भावना अपने मन में लाते हैं वो डिसाइड करें कितना कॉर्टिसोल निकलेगा। अगर 8 बजे तक कॉर्टिसोल ज्यादा निकल गया तो सारा दिन आपको जल्दी चिंता गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप होता रहेगा, आप अपने आप इरिटेट, चिड़चिड़े होते रहेंगे, चिड़चिड़े, हर बात में चिड़चिड़े करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, जो आजकल हो रहा है
जी
समाज में, सब झगड़े का कारण यही है। अगर आप 8 बजे तक चुप रह जाएं, अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को, जिसे मैं टीम कहता हूं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज को पॉजिटिव रख लें,
इनको बेहतर रखें,
बेहतर रखें, पॉजिटिव, सकारात्मक रखें, तो उसमें फिर वही महत्व है। पहले 20 मिनट मेडिटेशन कर ली तो ये पॉजिटिव रहेगी।
क्या बात है, तो सब चीजें आपस में जुड़ी है,
जुड़ी है
ऑर्केस्ट्रा की तरह,
ऑर्केस्ट्रा की तरह। तो फिर अगर 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 ये नेगेटिव हो गया थोड़ा सा भी, तो सारा दिन आपका जीवन केवस हो जाएगा
जी,
शोर हो जाएगा।
मतलब ये अपने हाथ में है कि आप उसको क्या बनाना चाहते हैं,
इसलिए
आप इसे एक आनंदमय संगीत बनाना चाहते हैं,
ये
शोर बनाना चाहते हैं।
इसलिए पहले आपने देखा होगा लोग उठते थे अर्ली मॉर्निंग, लेडीज उठती थी, आदमी भी उठते थे और उठ के भजन गाते रहते थे और फिर नहा धो करके मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाएंगे और फिर दिनचर्या शुरू करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल,
ये पहले उनको पता नहीं था, आज साइंस बता चुकी है ये बात को। तो इसका 4 से 8 के समय का बहुत महत्व है, पर शुरुआत 4 बजे से है।
बहुत अच्छा,
इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा मेडिटेशन करें और उसके बाद हर काम ध्यान रखें कि हमें कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना।
ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं, क्योंकि शायद यही है जो अमृत सिक्रेशन भी होता है साथ साथ पूरे शरीर में। जो
अमृत माना ये सामंजस्य, हार्मोन्स का सामंजस्य
जी,
क्योंकि यही हमारा जीवन है।
मुझे याद आता है कि हमारी आदरणीय दादी जानकी जी, हमेशा ये बात उनके कई लेक्चर्स में आती है कि सुबह 4 से 8 अगर मौन रहे व्यक्ति और जितना इंटरनल अपने ऊपर ध्यान रखता है तो उसका जो है 4 से 8 बजे तक इतनी वो शक्ति अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है कि उसका जीवन के ऊपर, व्यवहार में, हर एक के साथ का संबंध में
जी,
बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। और शायद आज दादी जानकी की इतनी आयु जो है उसका मुख्य कारण यही है कि सुबह 4 से 8 जो उन्होंने अपने प्रति, स्वाध्याय के प्रति रखा हुआ था शुरू से लेकर के, तो इसीलिए आज उनके बॉडी के ऊपर भी, जैसे उनके आयु के ऊपर भी उनका पूरा अधिकार है
जी। 100 वर्ष के आयु के बाद भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना, ये वाकई ही काबिले तारीफ है
जी। तो इसीलिए ये तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब के साथ में कि 4 से 8 जो है हमारा जितना मौन, अंतर्मुखता, साइलेंस, जितना अध्ययन, ज्ञान का अध्ययन करते हैं उतनी हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है।
और डॉक्टर साहब की बात सुनकर ये भी लगता है कि अगर सुबह अध्ययन करना है तो जो आप पढ़ रहे हैं वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए।
हाँ।
उसमें कम से कम नेगेटिव शब्द हो, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता हो, क्योंकि हर शब्द भी आप पे एक प्रभाव डालने वाला है। तो शुभ हो, शुद्ध हो, सात्विक हो,
देखो
ये बड़ा जरूरी है।
देखो ये कहा जाता है योग एक साधना है
जी,
योग को साधना के साथ खास जोड़ा गया है। और साधना सफल कब होती है, जब 3 चीज आपस में बहुत ऑर्केस्ट्रा की तरह या रिदम में काम करती है। सबसे पहला है साधक, दूसरा है साध्य और तीसरा है साधन
जी।
ये तीनों का बैलेंस, क्योंकि योग माना बैलेंस, संतुलन। अगर आचरण में ये संतुलन लाना सिखाता है तो इसका मतलब ये तीनों का भी जब संतुलन है जीवन के अंदर तो हमारी साधना सफल होती है। तो साधक हम स्वयं है
जी,
साध्य इंसान जो भी अचीव करना चाहे, चाहे परमात्मा की अचीवमेंट हो,
जो भी वो लक्ष्य रखता है, जो भी उसका
के अंदर हाँ
एम है,
एम है आनंद की अनुभूति करना है या कोई ना कोई विशेष दिशा में
या प्राप्ति करना चाहते,
प्राप्ति करना चाहते हैं, और साधन उसके लिए है मन। मन उस वक्त बहुत पावरफुल स्टेज में होता है और जितना उसको सकारात्मक अगर रख दिया जाए, नकारात्मक होगा तो उतना ही वो डिस्ट्रक्टिव भी बन जाएगा। लेकिन जितना उसको सकारात्मक रखा जाता है
जी,
उतना वो व्यक्ति को जितनी ऊंची उड़ान बनाना चाहे
भर सकता है। कई लोग सुबह सुबह उठ के टेलीविजन लगा लेते हैं, न्यूज़पेपर ले लेते हैं, ऐसी कुछ मैगजीन्स उठा लेते हैं, मुझे लगता है उसको बिल्कुल निषेध करना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 8 बजे तक निषेध करें अखबार का, टेलीविजन का और मोबाइल का
जी,
क्योंकि हमने जो रिसर्च में पाया है, जो हमने रिसर्च की ना कि 8 बजे तक अगर इसका निषेध करते हैं, 8 बजे के बाद भले अलाउड है, न्यूज़पेपर पढ़ना भी अलाउड है, टीवी देखना भी अलाउड है, इंटरनेट यूज करना भी अलाउड है, क्योंकि ये जो नेगेटिव टीम मतलब मनमाना टीम
जी,
माइंड बेस्ड टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, आपको 8 बजे तक पॉजिटिव रखनी है। जो हम अपने यहां करते हैं, हम जो इसे मुरली कहते हैं,
तो सुबह इसी चीज को साध्य बना लेना चाहिए 8 बजे तक के लिए, पॉजिटिव
जिससे हम मुरली कहते हैं ना, वो 100% पॉजिटिव टीम है, क्योंकि परमात्मा महावाक्य है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं, उसी को मनन चिंतन में रखते हैं, उसको रिवाइज करते रहेंगे, चिंतन मंथन करते रहेंगे अंदर अंदर, तो उससे जो एक तरह का अमृत जैसे ना, वो मंथन करने से क्या होता है ना, मक्खन निकलता है, और सारे दिन मक्खन खाते रहो
अमृत,
तो वो बहुत शक्ति देता है
जी बिल्कुल।
और हमने ये पाया कि 8 दिन में ही, मतलब 7 दिन में रादर, हम जब उनको सिखाते हैं मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, फर्स्ट डे उनको बताते हैं 8 बजे तक आपको चुप रहना है, प्रैक्टिकली कैसे इसका मनन चिंतन करना
जी।
तो पहले दिन कॉर्टिसोल मेजर करते हैं 8 बजे, और फिर 7 दिन के बाद मेजर करते
हैं। तो आपकी टीम के सब लोग इस चीज का फिर पालन करते हैं, मौन रहते हैं 8 बजे तक,
तो उसका हमने देखा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया था उसका, फिर हमारे ब्रेन के ईईजी पे फर्क पड़ता है, जो बीटा प्लस रिदम होती है वो एकदम डेल्टा में चली जाती है।
और आजकल तो कई लोग उठते ही सुबह व्हाट्सएप और ये सब खोल के देखना शुरू कर देते, इतने विचारों की बम्बार्डमेंट जो है वो जाती है अंदर, तो वो बिल्कुल ही।
और बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, हमारे जो दर्शक हैं बच्चे उसमें हैं
जी,
तो बच्चे अगर 4 से 5 अगर मेडिटेशन करने के बाद 5 से 6 घंटा पढ़ लें, जो भी उनका कोर्स है
जी,
तो 1 घंटे में 4 घंटे जितनी उसकी याद पढ़ाई हो जाती है,
मेमोरी बढ़
जाती है, मेमोरी पावर उसमें बहुत अच्छी होती है,
बिल्कुल आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप
दिन में 4 घंटा पढ़ना और सुबह 1 घंटा पढ़ना इक्वल है।
तभी तो कहते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो विजडम जो आती है, जो आध्यात्मिक प्रज्ञा हमारी खुलती है, वो तभी खुलती है कि जब हम सुबह का समय जो है अपने ऊपर थोड़ा स्वाध्याय करते हुए उसमें अध्ययन करते हैं। तो
मैंने देखा जो लोग सुबह उठ के अच्छा चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद सोते नहीं है, उनके चेहरे पे अलग एक विवेकशील आभा होती है। बाबूलाल जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें योगा के कुछ आसन बताएं, कुछ बताएं जो हम और तंदुरुस्ती की ओर बढ़ सकें, हमारा फिजिकल फिटनेस और अच्छी रहे।
प्राचीन काल के जितने भी साधक हुए, जितने भी योगा आचार्य हुए, महर्षि पतंजलि तक कहा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात व्यक्ति को योगा व्यायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। और महर्षि पतंजलि स्वयं कहा करते थे, 5:45 बजे से प्रकृति हमारी बहुत हेल्प करती है, इस समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इस समय वॉक करो, रनिंग करो, व्यायाम करो, आसन करो, एक्सरसाइज, ये करने से हमें बहुत ही बेनिफिट।
तो सुबह का जो पहला वक्त है वो मेडिटेशन में बिताया जाए, सूरज की जब किरणें आने लगते हैं, उसकी रश्मियां आने लगे, तो आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं।
तो इसी से संबंधित मैं कुछ आपको थोड़ा सा योगा टिप्स बताऊंगा, जिससे लंग्स आपके सबल बनेंगे और स्टेमिना बढ़ाने के लिए दमा साइनस के लंग्स के प्रॉब्लम दूर करने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
जी, स्वागत है आपका।
तो अभी मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम की ओर और कुछ प्राणायाम की ओर ले चलता हूँ, जिससे बहुत ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। राजयोगा और शारीरिक योगा के द्वारा हमें डबल बेनिफिट मिल जाएगा। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफायर भी हो जाएगा, और राजयोग के द्वारा हम डिप्रेशन से सहज मुक्ति भी हो सकते हैं। तो शारीरिक योगा के साथ हमें राजयोगा कंबाइन कर देंगे तो बहुत ही बेटर इसका रिजल्ट होगा। आज मैं ऐसा सूक्ष्म व्यायाम आपको कराने जा रहा हूँ जो छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर ओल्ड से लेकर हर आत्मा इसे करके पूर्ण लाभ ले भी सकती है, साथ साथ दे भी सकती है। दंडासन में बैठने के पश्चात दोनों हाथ आराम से पीठ के पीछे भू पर रख लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। इस आसन को बोलते हैं हम दंडासन। अब मैं ले चलता हूं आपको सूक्ष्म व्यायाम की ओर। एड़ियां अंगूठे आपस में टच कर लेंगे। पहला स्टेप में उंगलियों को टखनों तक मोड़ना और सीधा करना है। पहला स्टेप, जिनको फिंगर्स के प्रॉब्लम हो, गठिया के प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द होता हो, उनके लिए बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम अच्छा रिजल्ट है इसका। सेकंड स्टेप में पंजन को आगे की ओर खींचेंगे। ये बॉडी में अकड़न जकड़न होती है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता हो, जोड़ों का दर्द होता हो, उनके लिए है। ये सेकंड स्टेप होता है। एड़ी अंगूठे आपस में टच करके पंजन को ताकत से आगे की ओर खींचेंगे। थर्ड स्टेप में एड़ी अंगूठे टच करके पंजन को ताकत से ऐसे व्रत तक आगे खींचते हुए ऐसे वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। साथ साथ एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे। अगला स्टेप, एक डेढ़ फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। इसे बोलते हैं हम पंजा एक्सरसाइज। पंजन को आगे खींचते हुए एक बार पंजा ऊपर टच, एक बार नीचे टच करेंगे। सिंपल सूक्ष्म व्यायाम जनरल एक्सरसाइज का। पंजे आगे पीछे खींचेंगे, पंजा चलान एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। दोनों पंजन को एक साथ इसे गोलाई में भी घुमाएंगे। जिनका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होता हो, अकड़न जकड़न होती हो जिनके, उनके लिए बेटर होगा। यही वाला पोज करते जाएंगे घुटने पिंडलियां के लिए। अगला स्टेप ये भी आप कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम में आता है ये वाला भी। पैर आगे पीछे भी ले सकते हैं। आगे झुकते हुए घुटने पर हाथ के पंजे लेकर ये व्यायाम भी करा सकते हो आप।
अच्छा,
अगला स्टेप में इस पैर को मोड़ करके यहाँ रख लेते हैं जंगा के ऊपर। फिर आराम से बैठ जाएंगे इस पोज में, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर अब धीरे धीरे जंगा भू से टच करेंगे। जंगा और घुटनों के भी सारे प्रॉब्लम इससे दूर होता है। जिनकी बॉडी थोड़ा कड़कपन है, वो टच नहीं कर पाएगी, जब फिजिकल बन जाती तो इजीली तरीके से वो टच होने लग जाती, तो धीरे धीरे कराइए आप उनको। और एंटी क्लॉक वाइज बहुत जरूरी, वरना एक साइड का अंग पकड़ लेगा। एंटी क्लॉक वाइज भी बहुत जरूरी है, धीरे धीरे इसी तरह से इसको कराना है। अगला स्टेप पे ध्यान देंगे, पैर के पंजे को मोड़कर यहां पर रख लेंगे जंगा पुक पर, पंजे को पकड़कर ऐसे वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। भी सूक्ष्म व्यायाम है, ये भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे आप सभी के लिए। पर दोनों पैरों को करना बहुत बहुत जरूरी है, और एंटी क्लॉक वाइज भी करना बहुत जरूरी है। इसी को एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे।
तो आपने इन आसनों को देखा और आपने ये भी जाना देखा ये कितने सहज आसन है, कोई भी इन्हें कर सकता है। लेकिन आप समय का ध्यान रखें, अपनी सुविधा का ध्यान रखें, अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखें। इन्हें करते समय ये बातें आप ध्यान में रखते हुए इन्हें करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपका शरीर पहले से बेहतर होगा, उसकी ताजगी बेहतर होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी, और आप इस शरीर के साथ मानव जीवन का और गहरा आनंद ले पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, आपने इन व्यायाम को देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप कुछ बताना चाहेंगे हमें कि इनको और बेटर कैसे किया जा सकता है?
देखिए, बहुत अच्छी बात है व्यायाम करना, आसन करना, किंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट सभी को, हमारे दर्शकों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई आसन करें या व्यायाम करें या सैर करने जाएं, एक तो हमारा पेट साफ होना चाहिए उसके पहले। अगर हम पेट साफ करें बगैर, है ना, अपनी आंतों को साफ करे बगैर हम चले गए, हमने आसन कर लिया, उल्टा साइड इफेक्ट आएगा, वो टॉक्सिन सारी बॉडी में फैल जाएंगे। ऐसे जो होते हैं बहुत टॉक्सिक बहुत पॉइजनस गैसेस होते हैं जो बॉडी 24 घंटे में नीचे रेक्टम में पहुंचा देती है
जी
मल पदार्थ को। और अगर हमने जब एक्सरसाइज की तो हमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, तो वो उसके इफेक्ट में सारी एक एक कोशिका में वो जहर फैल जाएगा।
और मैंने अक्सर देखा है लोग सुबह सैर करने के लिए ऐसे उठते ही चल देते हैं, तो वो ठीक नहीं है,
बहुत गलत है, बहुत नुकसान होता है। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कारण भी है बीमारी पैदा करने का, गलत एक्सरसाइज, रॉन्ग एक्सरसाइज,
सही तरीके से ना हो तो वो नुकसान।
और दूसरा, सूर्य उदय के साथ करना चाहिए
जी,
और इसके पहले नहा लेना चाहिए। अगर आप पहले टॉयलेट गए और उसके बाद स्नान करके तब आप शुरू करें, क्योंकि जो हमारे जो ना स्वेट ग्लैंड्स है ना, पसीने की ग्रंथियां, उनके छींक रात में बंद हो जाते हैं, और वो जब एक नहा लेंगे ना रब करके अच्छे से बॉडी को, तो आपके सारे खुल जाएंगे। और जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें पसीना भी आना चाहेगा तो आएगा, तो आप फ्रेश फील करेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, कभी भी सैर करते समय या प्राणायाम आसन करते समय बात ना करें। अगर बातें करते हैं उस समय चलते, काफी लोग क्या करते हैं, आपने देखा गार्डन में देखा होगा, पार्क
मैंने
लोग बातें करते हुए जा रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ये सही है, गलत है। क्योंकि जब आप बातें कर रहे हैं तो आधे फेफड़े में सांस जा रहा है, ऊपर वाले फेफड़े में हवा जा रही है, नीचे वाले फेफड़े में नहीं जा रही है, और नीचे 2/3 ब्लड नीचे वाले फेफड़े में आया
है। ओके,
मतलब साफ होने के लिए आया है। अगर हमारा डीप ब्रीथ, जब तक गहरा सांस नहीं होगा ना, शांति की स्थिति में आप सैर करें, चुप सैर, मतलब एकदम अपने को आत्मा समझ के, परमात्मा की जिसे हम कहते हैं मेडिटेटिव वॉक कहते हैं, वो आप सैर करें, तो उससे क्या होगा कि आपके पूरा गहरा सांस, क्योंकि सांस का कनेक्शन शांति से है, तो जितना आप पीसफुल होंगे उतना सांस गहरा जाएगा।
ये कितनी छोटी सी बात है और ये कितनी,
तो हमारा एक श्वास इंपॉर्टेंट है
जी,
हर श्वास शांति का सांस होना चाहिए।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बेहतरीन ज्ञान को आप इतनी सहजता से हमें बता रहे हैं। और ये छोटी छोटी गलतियां हर कोई करता है चलते समय, बात करना, मोबाइल फोन लेना, या ठीक टाइम पे ना सोना, या सुबह ऐसे ही सैर पे चले जाना बिना नहाए बिना स्वच्छ किए, तो ये छोटी छोटी बातें कितना बेहतरीन जीवन बना सकती हैं। शायद हमें कोई पहले बचपन से बताए तो भारत और सारे विश्व के बच्चे कभी बीमार ही ना हो, वो सबसे तंदुरुस्त रहें। आइए योग के कुछ और गहरे अनुभवों को जानते हैं क्लिप के द्वारा। आइए सुनते हैं आज के जो योगी हैं हमसे क्या कहना चाहते हैं।
हम आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उससे जो फायदे होते हैं, उससे मन खुश रहता, तंदुरुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहते हैं। किसी बात की भी कोई समस्या आती है तो उसको हम टाल देते हैं, उससे ज्यादा लंबा समय नहीं देते। तो इसलिए राजयोग के द्वारा जीवन जीने की जो कला है बहुत सुंदर कला है, घर घर को हर व्यक्ति के जीवन को सुख शांति में बनाने की कला है, हर घर घर में इसका प्रचार हो, सब समझें, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। इसलिए आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना, ये सहज राजयोग है। ऐसे तो दुनिया में अनेक प्रकार के योग हैं, हठ योग है, शारीरिक योग है, वो शरीर की तंदुरुस्ती दे सकते हैं लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते हैं, आत्मा को सदा काल के लिए सुख शांति नहीं दे सकते। तो इस राजयोग से मैंने जीवन में देखा सुख शांति आनंद पवित्रता टेंशन ये सब बातें छूट गई, क्योंकि जो बात होती है वो कल्प पहले मापिक होती है। एक मक्खी भी उड़ी है वो भी उड़ेगी, कल्प बाद भी वो उड़ेगी, ये बना बनाया 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो इसलिए सुख शांति आनंद पवित्रता ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हम एक्टर हैं, इस ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए मुझे सुख का शांति का आनंद का पवित्रता का बहुत ही अच्छा अनुभव है, और कोई बात आती है कोई टेंशन नहीं करते, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई समस्या भी आती सहज पार कर लेते।
तो दोस्तों, आज हमने योग रहस्य के इस एपिसोड में बेहतरीन ज्ञान को जाना, और इतना अच्छा वातावरण था, मैं सोच रहा था कि इन सब बातों को जो हमारे प्यारे मेहमानों ने, जो कि योग के अपने आप में सभी विशेषज्ञ हैं, इतने अच्छे ढंग से बताया और इतना अच्छा वातावरण था, इतना अच्छा अनुभव हो रहा था, यदि सुनने से इतना अच्छा अनुभव हो रहा है तो तो आप यकीन जानिए आप करेंगे तो कितना लाभ होगा और कितना बेहतरीन आपको अनुभव होगा, क्या आनंद आप पाएंगे उसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। तो मैं अपने प्यारे मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, भ्राता बाबूलाल जी, जिन्होंने आज इस बेहतरीन ज्ञान को हमसे बांटा, हम तक पहुंचाया, हमारी सारी टीम जो इस ज्ञान को आप तक लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, सुनने से कुछ नहीं होता, सुना हमने शायद सदियों से होगा, युगों से होगा, जन्मों से होगा, इस राह पर चलना पड़ता है और कभी कभी अपनी जिंदगी में रोशनी के लिए खुद ही दीपक बनकर खुद को जलना पड़ता है। तो कदम बढ़ाइए, एक सुंदर स्वस्थ जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आज की इस कड़ी में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, ओम शांति।